نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، دوستو، کل یہ مضمون مولانا کے کہنے پر عرض کیا گیا تھا کہ انسان کی زندگی کے حال میں اور اس کے مقام میں، جو کہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟
My dear brothers and guests, yesterday the topic carried on based upon our request about the technical terms of hal and maqam from the terminology of the Sufiya.
ایک بہت ہی تھوڑا سا حصہ اس سائٹ کا اس موضوع کا آپ کے سامنے ذکر میں آیا تھا.
And only a small portion of that large topic was shared yesterday.
اس میں بہت تفصیلات ہیں.
There are many more details for in it.
جب آدمی دین پر عمل کرتا ہے، عمل کرتے کرتے کوئی خاص کیفیات ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کو بھی حال کہتے ہیں.
When a person works in the deen and begins to act upon the deen, there are certain kayfiyat or experiences they have, and this is also known as hal.
تو عام طور پر صوفیہ جب تبصرہ حال پہ کرتے ہیں تو اس سے وہ چیزیں بھی مراد ہوتی ہیں.
And so regarding the technical terminology of the Sufiya, even this idea of these experiences are also known as hal.
اس میں آدمی پر کبھی وہ چیز ایک لمبی مدت کے لیے طاری ہوتی ہے اور کبھی عارضی تھوڑی مدت کے لیے طاری ہوتی ہے.
And in relationship to this, sometimes these experiences can be lengthy and sometimes they can be short-lived.
معلوم نہیں کہ وہ ٹاپک چھیڑنا اس وقت مناسب ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک دو تین باتیں آ گئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ آپ حضرات میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو تصوف سے مناسبت رکھتی ہے.
I'm not sure if it's appropriate now to go into more depth regarding it, but some thoughts came to mind in relationship to it, and so since many of you are inclined towards the tasawwuf, I thought I'd mention them.
آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شاہ عبدالحق ردول بھی ایک بزرگ گزرے ہیں.
There was a great pious saint, Shah
عبدالحق
ردولوی.
ان پر ایک استغراق کا غلبہ تھا.
He was overcome in the state of استغراق.
استغراق کا مطلب ہوتا ہے ایک حال میں ڈوب جانا.
And استغراق refers to when you go deep into a specific حال or state.
وہ بزرگ ایسے تھے کہ ان پر استغراق کا 30 سال تک غلبہ ہو گیا تھا.
And he was affected of the state of استغراق for 30 years.
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں ایک کیفیت ان پر طاری ہو گئی.
That is in the remembrance and experience in the remembrance of Allah Ta'ala, this kayfiyah, this experience overwhelmed him.
اس کا اتنا اثر تھا کہ اللہ کا حکم جب آتا تو وہ پورا کرنے مستعد رہتے تھے.
And this had such an effect upon him that when Allah's command came upon him, he was completely ready to act upon it.
لیکن اس کے علاوہ کی حالت میں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا.
But aside from this, he would not remember anything.
مشہور ہے کہ ان کو اپنے گھر سے اپنے مسجد کا راستہ 30 سال تک یاد نہیں رہا، معلوم نہیں رہا کہ میرے گھر سے میری مسجد کہاں پر ہے.
Such that for these 30 years, he even was unable to remember the route from his home to the masjid.
اور پوری پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے.
Yet he would still pray all 5 prayers in congregation.
Unke sath unka khadim hota tha.
He used to have a servant with him.
Aur wo haq haq kehte hue unke samne chalta tha.
And he would walk in front of him and saying haq haq.
और नमाज पढ़ने के बाद वापस घर को लेके आता उनको और सामने चलता यही हक हक कहते हुए.
And he would return him home by walking in front of him uttering haq haq.
उनके शेख को मालूम हुआ कि ये कैफियत उनकी है.
His sheikh then found out that this is an experience he was going through.
तो उन्होंने पूछा कि उनकी नमाजों का क्या हाल है.
So he asked what is the state of his prayers.
उन्होंने कहा नमाज पे वक्त पे मस्जिद जाते हैं आते हैं नमाज पूरी पढ़ते हैं.
He was informed that he goes to the masjid and returns back and prays all his prayers on time.
फरमाया फिर कोई हरज की बात नहीं चलता.
And I said, then don't worry about it. This is not an issue.
तो इसलिए अगर हाल इन चीजों को भी कहते हैं.
So hal is also inclusive of these things.
बाद लोगों पर रिक्कत तारी होती है, रोते रहते हैं, रोने का हाल होता है.
Some people they are overwhelmed with crying. They keep shedding tears. That's their hal.
बाद लोगों पर शौक का गलबा होता है, वो एक हाल में होते हैं.
Some people have this experience of shauk and enjoyment.
बाद लोगों पर कब्ज का गलबा होता है, बहुत ज़्यादा तबीयत बुच जाती है, वो उसके एक हाल में होते हैं.
Some people enter the hal of qabd or having this restriction within themselves.
तो हाल और मकाम में ये टाइप की बहसें भी हैं बहुत सारी.
So also within hal and maqam you have these different types of levels.
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सफर करने में जब एक आदमी ईमानी सिफात में पुख्ता हो जाता है तो उसको मकाम कहते हैं.
When a person while traveling on the spiritual journey towards Allah Ta'ala, when they have these iman characteristics become strong, then this becomes maqam.
और ये दोनों के दोनों दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सफर करने के मरहले हैं.
And these are all levels or experiences on the journey towards Allah Subhanahu wa Ta'ala.
शायद आपने सुना होगा कि हाल का जो मरहला है वो सैर इलल्लाह कहलाता है.
So the experience of hal is going to be known as sayr ilallah, journey towards Allah.
और मकाम का जो मकाम होता है वो सैर फिल्लाह कहलाता है.
In maqam, station, that was often known as sayr fillah.
इसका मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा और सिफात में आदमी चल रहा होता है.
Journeying in Allah, meaning journeying through the experience of Allah Ta'ala's asma wa sifat, characteristics and names.
और इलल्लाह का मतलब अल्लाह ताला की तरफ का मतलब होता है कि आदमी अपने रजाइल रजीला सिफात को छोड़कर हमीदा सिफात की तरफ चल रहा होता है, इसलिए उसका नाम सैर इलल्लाह रखते हैं.
In ilallah, journeying towards Allah Ta'ala means to abandon our incorrect characteristics and then develop the praiseworthy characteristics.
इसलिए हाल में आदमी सैर इलल्लाह की मंजिल में होता है.
And thus hal is always ilallah.
और मकाम में आदमी सैर फिल्लाह की मंजिल में होता है.
And maqam is the position of doing sayr filla.
और उसकी कोई लिमिट नहीं होती.
And there's no limit to this.
क्योंकि फिर वो चलता ही रहता है, आदमी मौत तक चलेगा. अगर 1,00,000 साल की उसकी उम्र होगी तो 1,00,000 साल तक भी वो सफर चलता ही रहेगा.
And this person, there's no limit to this, no end. He will continue even if till his end, even if he lives for 100,000 years.
इसलिए जो हजरत तसव्वुफ के लेन से किसी दर्जा की मुनासिबत रखते हैं वो ये ना समझे कि वो एक मंजिल पे जाके फिनिश पे हो जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकते.
And this is why those who are connected to the soul, they will never or should never consider that they'll ever reach an end point.
मगर आज हमारे मौजू में ये बात है कि इस सुलूक के साथ में दावत और खुरूज का क्या जोड़ है.
But today what we're going to discuss is what is the connection between dawah, inviting and khuruj, going out for the sake of Allah, with the sawaf.
Suluk ka sara marhala Allah tabarak wa taala ke sath taluq par hai.
Suluk, spiritual journey, is connected with Allah subhanahu wa taala.
दावत का सारा मरहला अल्लाह ताला से ताल्लुक पर है.
And दावा is also has a connection with Allah subhanahu wa taala.
इसलिए मकसद के तौर से दोनों में फर्क नहीं है.
That's why in terms of intention and purpose they're both the same.
अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक में मतलब ये होता है कि जो अल्लाह को पसंद है वो मुझे पसंद हो जाए.
And ta'alluq over here, this connection refers to whatever is pleasing to Allah becomes pleasing to us.
और जो अल्लाह को नापसंद है वो मुझे नापसंद हो जाए.
And that which is displeasing to Allah is displeasing to us.
एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मकसूद जो होता है वो ये है कि मामूरात शरईया मरगूबात तबईया हो जाएं.
One of the great pious saints who came before, he said that the goal is that the actions or the requirements of Sharia become the actual your natural inclination.
और ممنوعات شرعیہ مکروہات طبعیہ ہو جائیں.
And that which is prohibited by Sharia becomes disliked to an individual.
کھانے کی جیسی رغبت ہوتی ہے.
Like the desire person has towards eating.
نماز کی ویسی رغبت ہو جائے.
that same desire now comes for a person towards prayer. Those things that we hate, that those evil, impure things, the same things that are impermissible, we hate those things the same way. Those things that Sharia prohibits, now our own self will want to prohibit as well. And this is now how a person becomes aligned with Allah Ta'ala wants. And when a person gains alignment, this is known as wilayah.
So Allah Tabarak wa Ta'ala ke jo nafarmaniya ho rahi hoti hain, agar bande ki uske saath mein muafiqat hai, to phir wo banda kabhi bhi suluk nahi tay kar pa sakta.
If an individual does not have this alignment with Allah subhanahu wa ta'ala, then what will happen is the person will never be able to walk properly on suluk.
Jaise masalan ek hadith sharif mein aata hai ke koi bhi qaum mein jab nafarmaniyan ho rahi hoti hain,
as it comes into within the noble hadith that if ever within a community there's wrong actions, haram actions occurring,
iska matlab ye hai ki qaum se murad ye nahi hai ki musalman hai to musalmanon mein, gair muslim hai to gair muslim, jahan insani muashara rehta hai.
This doesn't mean Muslim, non-Muslim separate. This means wherever human beings are living. If there are wrong actions occurring there, so in that first stage, there'll be two types. Those who do the wrong and those who do not do the wrong. And those who do not do wrong also have two categories.
इन बुराई करने वालों को देख देख के आदि हो गए.
Those who see the wrong happen, they become used to it.
और इतने आदि हो गए कि जब आप उनको देखते हैं तो उसकी बुराई नहीं आती ज़हन में.
And they're so accustomed to it that when they see that wrong, it doesn't really affect their heart.
अल्लाह के पास इन दोनों इंसानों में कोई फर्क नहीं रहता.
With Allah subhanahu wa ta'ala, there's no difference between these two types of people.
यह समझ लीजिए कितनी सख्त बात है.
To understand how severe this idea is.
जो आदमी बुराई कर रहा है उसमें और जो देख देख के आदि हो चुका है उसमें कोई फर्क नहीं है.
There's no difference between the one who's doing the wrong and the one who's seeing it but is accustomed and doesn't care about it.
वो करने वाले ही में शुमार होता है.
They are considered amongst those who are doing it.
अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
You see what I'm trying to say over here.
कितनी बुराइयां हैं, नाफरमानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की जो हमारे सर्कल में हो रही होती हैं और हम रोजाना यूज्ड टू हो चुके हैं उनको देख के. अब हम ना जुबान से बोलते हैं, ना हाथ से रोकते हैं, ना दिल में उसकी कराहियत बाकी रही. उन्होंने फरमाया कि इससे नीचे ईमान का कोई दर्जा नहीं है. वज़ादी का अदाफुल ईमान है ना, नहीं रही है. तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि कान कमन शहीद हा फरदियह कान कमन शहीद हा, जो उनसे राजी हो चुका है वो अब उसमें शरीक हो चुका है.
How many of these actions continue to happen around us that's incorrect and we become so accustomed to it that we no longer even feel any type of hatred towards it, and Rasulullah has mentioned this is the lowest, this is the weakest level of iman, and this individual who's witnessed as if he has done it.
अगर आदमी दावत की मेहनत नहीं करता है तो ये कराहत वाली ज़हनियत खत्म हो जाती है.
If a person is not
बुराई को देख के मकरूह समझने वाली ज़हनियत खत्म हो जाती
है. If a person does not engage in dawah, then that individual will no longer have this hatred towards these acts, and then they will become accustomed to them.
क्योंकि जब दावत दी जाती है अल्लाह की तरफ तो जो अल्लाह को पसंद है उसमें, जो अल्लाह को नापसंद है उसमें इम्तियाज होता रहता है और आदमी देख के कुड़ता रहता है.
When a person is engaged in giving dawah, then the individual sees what Allah Ta'ala wants done and does not want done, and that constantly serves as a reminder and a way to keep that feeling alive.
और अल्लाह तबारक व तआला को वो आदमी जो कि नेक हो लेकिन अपने इस फर्ज में गाफिल हो, अल्लाह पाक उसके साथ क्या क्या मामला फरमाते हैं, क्या हुक्म उस पर लगाते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम एक हदीस में समझ सकते हैं.
And that individual who falls in this category, who how Allah subhanahu wa ta'ala deals
with, उस बंदे से जो कि नेक हो,
that person who is, though that person may be pious but falls in this category,
नमाज का पाबंद है, मस्जिद आता है, शरीयत का पाबंद है,
who goes to the masjid, who is regular within the acts of Sharia,
और फिर उसके बाद वो जो है अगर वो नहीं करता, दीन की मेहनत नहीं करता है, तो उसके बारे में अल्लाह पाक का मामला क्या होता है?
How will Allah deal with these individuals who then do not carry on this responsibility within the deen?
एक हदीस शरीफ है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाहु इला जिब्रील अलैहि सलाम अन इक्लिब मदीना कजा व कजा.
In a hadith, we see that Rasulullah, that Allah Ta'ala had told Jibreel alayhi salam to take the city and then turn it upon such and such people.
Jibreel alayhi salam aaye wahan par.
Jibril alayhi salam came to them.
वहाँ उन्होंने एक बंदा देखा जो बहुत ही नेक मुत्तकी था.
And when he was given this command, he came to the people. But he saw a person who was very pious and devoted.
इतना नेक मुत्तकी था कि जिब्राइल अलैहि सलाम मुतासिर हुए उसे.
And he was so pious and devout that even Jibril alayhi salam was affected by him.
और जाके अल्लाह पाक से अर्ज किया कि या रब्बी इन फीहिम अब्दका फुलानिन लम यासिका तरफतायन.
Oh, and he went back to Allah Ta'ala, Jibreel alayhi salam, and said, "Oh Allah, there is a slave of yours who is there. He will not disobey you even the blink of an eye."
Allah Tabarak wa Ta'ala farmaya ke iqlibha alayhi. Farmaya pehle uska ghar palat de.
So Allah Ta'ala said that first to flip upon him, or first his home flip over.
Ma alayhim. Phir uske baad puri basti ka palat de.
And then seize the rest of the city and flip it over.
Allah ne ye nahi farmaya ke uska taqwa, uski deendari mujhe pasand nahi hai.
Allah Ta'ala did not say, "I do not like his taqwa and his devotion."
Magar pakad ka sabab usko pehle bana diya.
Rather, he was seized first.
Phir uske baad wajah batayi ki main tumhe ye hukum kyun de raha hoon.
Then he explained or showed why this order was given.
Ye kaun si deendari hai?
What type of righteousness is this?
Aur ye kaisi mere saath wafadari hai?
And what type of devotion is this?
Aur ye kaisi meri makhlooq ke saath mein mohabbat aur shafqat hai?
And what type of compassion and love is this towards my creation?
कि खुद तो नेक बन गया,
that you yourself became pious,
और दूसरों की बुराई का उसके उस पर कुछ असर ही नहीं है.
And yet the wrongs of other people did not affect you at all.
فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِيَّ قَطُّ. تَمَعُرْ कहते हैं पेशानी के शिकन आलूद होने को, जब पेशानी बुराई किसी वजह से आदमी को नापसंद होती है, उसको तमाउर कहते हैं. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِيَّ قَطُّ. गुनाहों को देख के उसकी पेशानी पे शिकन तक नहीं आता, वो अपने नमाज रोजे में लगा हुआ है.
That seeing the wrong of the people, it did not even cause the scrunching of the forehead. Even that small response didn't even come from him.
इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि तरीकत बजुद खिदमत खल्क नीस्त. तरीकत खिदमत खल्क के अलावा कुछ और चीज का नाम नहीं है.
So this is why our elders have said that tariqah is the serving of the people and humanity.
तरीकत बोले तो सुलूक.
Tariqah referring to सुलूक.
क्योंकि आप हजरत सुलूक के लेन के हैं ज्यादा इसमें इस वक्त, इस वजह से उसका जोड़ अर्ज कर रहा हूँ मैं.
And because many of you are engaged in suluk and spiritual path, this is why I'm showing this connection.
Farma tariqat bajul khidmat e khalq nist, siwaye khidmat e khalq ke aur tariqat kisi aur cheez ka naam nahi hai.
Our saints have said that other than serving humanity, tariqa is nothing else.
Batasbih o sajjada o dalq nist, haath mein tasbih leke musalle ke upar baithne ka naam nahi hai ye.
It is not the name of sitting on a prayer rug with a tasbih.
बुजुर्गों का सुलूक वालों का कहना है.
This is the saying of the saints and the people of the soul.
इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक की बुनियादें दो हैं.
So the foundation of connection to Allah are two.
ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अज़मत और अल्लाह पाक की बात की अज़मत दिल में आ जाना.
Having the honor and the gravity of Allah's word within our hearts.
Shafqat ala khalqillah, jo Allah ki makhlooq hai uske sath shafqat aa jana.
And having compassion towards the creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
Agar ta'zeem mein amrillah bhi mein bhi kami hui aur shafqat ala khalqillah mein bhi hui to dosti banne ka koi matlab nahi banta.
And if either of these two lack, having the gravity of Allah's words within our hearts or having the compassion towards creation, then this won't reach that completion of friendship.
अगर मखलूक पर शफकत इस तरह से की जाए कि अगर कोई मखलूक पानी में डूब रही हो और आप ये समझें कि इसको खाना खिला देना शफकत की बात है.
If you have a situation in which a person is drowning in water and you think, oh, the only way to show compassion is feeding this person food,
तो ये शफकत हुई है?
Will this be compassion?
अगर एक आदमी दीन से दूर जा रहा और आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये मखलूक की खिदमत है, तो ये खिदमत हुई है.
If a person is leaving deen and then we're just feeding them, is this really showing compassion towards them?
To nahi hoti hai.
No, this is not the
case. Isliye sabse jo aham cheez hoti hai wo muqaddam hogi yahan pe.
Because what is the most important thing, it has to come.
Aur wo ye hai ki pehle usko wrong hone se bachao.
First save them from doing wrong.
Uske baad mein wo bhooka hai to khana khilao.
Then if they're hungry, feed them.
Kapdon ki zarurat hai to kapde pehnao.
If they're naked, then give them clothing.
Musalman bhi shoor se dur ho gaya.
See, even Muslims, we have left the
halanki shaur mane samajh,
yeah, understanding.
Halanki
huzur e pak sallallahu alaihi wasallam ki taleem ki barkat se usko sab cheezon ka idrak hona chahiye.
But from the barakah of the teaching of the prophet sallallahu alaihi wasallam, they should have this connection with all these things.
Huzur ne farmaya ki agar kisi musliman ki ek namaz chhoot rahi hai,
Rasulullah sallam has mentioned that if a Muslim is missing even one prayer,
to uska nuksan kitna hai,
how great is the harm that comes from it.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन, ये तो ईमान का हिस्सा है.
having certainty in the words of the Prophet, this is a part of our iman and faith.
Problem jo hai wo ye hai ki ye huzur ki baat hai ya nahi hai, ye confirm karna chahiye.
The only thing is that confirming is this the same the Prophet or not.
Agar hai to fir doubt nahi karna hai.
If it's the word of the Prophet and we know it, then we should not doubt it.
Ye baat bilkul sahi hadithon mein maujood hai, yani confirm hai ki ye huzur ne farmaya hai.
We should confirm is that from the hadith and the statement.
Ab ye jo hadith main suna raha hu ye confirm hai.
So what I'm telling you now is confirmed.
Huzur ne farmaya ki kisi aadmi ki biwi bacche aur maal pura loot liya jaye to ek namaz ke chhootne ka nuksan hai isse.
That if a person's spouse and children and wealth is all corrupted and looted, that this is the type of loss that occurs from a person missing a prayer.
Hamare zehen mein nahi aati ye cheez.
This isn't coming in our minds.
Magar jo cheez hamare zehen mein nahi aayi, hum nabi ki itla par yakin kare, usi ka naam iman.
But iman is having understanding, acceptance of what the Prophet has warned us towards.
Alladhina yu'minuna bil ghaib.
Those who believe in the unseen.
Hame kya maloom ki kya nuksan hai, kya fayda hai?
We don't know what has benefit.
अपने मुशाहिदे के खिलाफ हुजूर की खबर पर यकीन करना.
Our witnessing is based upon having certainty in the Prophet's words.
कितनी इंसानियत है जो पूरी दुनिया से migrate होके यहाँ आती है.
How many people they're attracted throughout the world towards here?
मुसलमानों में कितनी बड़ी huge community है माशाल्लाह, हर इलाके से पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग.
Look at the Muslims that they're flocking.
मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ के सिचुएशन को समझ लें थोड़ा.
I'm speaking about here because we understand our situation.
वैसे तो पूरे आलम की यही है.
This is across the world.
मगर ये है कि जहाँ से लोग आ रहे हैं माइग्रेट होकर रिफ्यूजी बनके, उनके मकान लूट लिए गए.
Those people who are coming, example as refugees.
उनको मुल्क बदर कर दिया गया.
Their homes have been looted.
उनकी दौलत लूट ली गई.
Their countries have kicked them out. They've been
उनके
overcome.
उनके खानदान वालों के बेहिसाब लोगों को शहीद कर दिया गया.
The people within their families have been killed.
कितना बड़ा नुकसान उनका हुआ.
A horrible plight they've suffered.
No doubt इसमें ये बहुत बड़ा नुकसान है.
So no doubt this horrible plight.
और जितना भी अफसोस किया जाए कम है.
And however we can feel for them, it's not enough.
उनको भी पता है कि उनका कितना नुकसान हुआ.
And they know how much they've hurt.
हमें भी अंदाजा है कि उनका कितना नुकसान हुआ.
We have an idea of how much they hurt.
मगर एक चीज का ना उनको अंदाजा हो रहा ना हमें अंदाजा हो रहा.
But what they don't know and what we don't know.
वो ये कि दुनिया में जो उन्होंने लूज किया है वो हम देख रहे हैं, दीन में जो लूज किया कर रहे हैं वो नहीं देख रहे.
We see what they've lost in this world, but we don't see what's been lost in the deen.
उनके उनके ईमान का क्या हाल है?
What is the state of their faith?
उनके नमाजों का क्या हाल है?
What is the state and condition of their prayer?
उनके गुनाहों में इब्तिला का क्या हाल है?
What is the situation in regards to their submergence in sin?
जिंदगी के कौन से रुख में वो अल्लाह की मर्जी के मुआफिक हैं?
In which area are they having any alignment with Allah Ta'ala?
माशरत में, मामलात में, कल्चर में, तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में, अखलाक में, किस चीज में आखिर वो अल्लाह की मर्जी पर हैं?
In which area, in character, in dealings with people, in business, in which area are they aligned with Allah Ta'ala wants?
अब आप बताइए कि हमारी फीलिंग में और अल्लाह पाक के इल्म में और हमारी फीलिंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में क्या मुनासिबत है?
What is the connection now between how we feel and what the Prophet has taught?
हमारा सुलूक कैसे तय हो जाएगा इसमें?
How will we have spiritual progress in this?
नहीं हो सकता.
It can't happen.
हम गलत फहमी में.
We're in the wrong understanding.
इसलिए ये समझना होगा हमको कि अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी दी है वो पूरे को एक एक समरी के हिस्से से पहले उसको अंडरस्टैंड करना होता है.
So it's important for us to first understand the summary of what Allah Ta'ala has given us.
जो चीज अल्लाह पाक ने हमें हुक्म में लगाई हुई है हर एक पर अमल करने की कोशिश करना है.
What Allah Ta'ala has commanded us to do, for all those things we should be engaged in.
एक आदमी को नमाज का भी हुक्म है, रोजे का भी हुक्म है.
Person has a command towards prayer and fasting.
वो नमाज पढ़ता है, रोजा नहीं रखता.
But he prays but doesn't fast.
अगर कहा जाए कि ये इसका सुलूक पूरा तय हो जाएगा तो हो जाएगा.
If you say that this person's progress is complete, is that the case?
आप यही समझाओगे उसको कि भाई नमाज भी पढ़ने का हुक्म है, रोजा भी रखने का.
You would naturally tell him that you have to pray and fast.
जो हुक्म है वो पूरा करना है.
That which is commanded you have to do completely.
तो दीन पर चलने की कोशिश, दीन से सीखना, दीन पर चलना, ये भी हुक्म है. और दीन को चलाना, लोगों में दीन की बात करना, ये भी हुक्म है.
Learning and abiding by the deen is a command, and also going and giving deen and teaching to others.
अगर हम एक बात पर अमल करें और दूसरे पे ना करें तो ये दीनदारी कहाँ होगी?
If we do one thing and not the other, how is this being righteous?
बहुत लोगों को ये होता है कि भाई इसको मरहला, इसको step by step करो. पहले खुद को संभालो, उसके बाद में फिर लोगों की बात करो.
So many people say, let's take it step by step. First, take care of yourself, then others.
शरीयत में हुक्म ऐसा है क्या?
Is this the command in Sharia?
ऐसा तो नहीं है.
It's not the case.
किसी का बाप शराब पीता हो.
If someone's father is drinking,
और उसका बेटा भी पीने लगे,
and the son begins to drink,
तो बाप सोचे कि मैं पहले छोड़ता हूँ, मतलब ये कि मैं देखूँगा कब तक चलती है ये, जब मैं खत्म हो जाऊँगा, जब उसको बोलूँगा.
So then will it be okay if the father says, okay, let's see how long this goes. When it finally leaves me, then I'll go warn my son. But then he'll pass away. So when will, how will he leave it then?
जो बाप स्मोकिंग कर रहा है अपने औलाद को देखे तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं स्मोकिंग पहले छोड़ूं फिर मैं बोलने के काबिल हो जाऊंगा.
A father seeing his son smoke, will he first say, I'm going to give up smoking, then I'll do the
habit. वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है.
These are two separate things.
वो भी करना है कि छोड़ देना है.
Yes, he has to leave it himself.
मगर उसके इंतजार में ये नहीं करना है, ये गलत है.
But in that anticipation waiting doesn't mean that you stop warning.
इसीलिए ये है कि अगर तुम नहीं भी अमल कर रहे किसी चीज में, कोताही भी कर रहे हो, तो भी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों पर भी.
Because even if we are lacking one particular area, we still have to make effort in others in those areas.
बल्कि तुम्हारे अंदर उस कमजोरी के दूर होने का रास्ता इस तरह बनेगा कि तुम दूसरों को बोलना शुरू कर दोगे ये गलत है.
And it can be such that by your path of leaving this can be by warning others to stop what they're doing.
उससे पलटकर तवज्जो आपकी तरफ आएगी.
And then the spiritual energy would turn and come towards
you. मैं उसको इसीलिए बोल रहा हूं कि वो चीज अच्छी नहीं है.
I'm saying this because that is not good.
तो इसका मतलब ये है कि मेरे को भी अच्छी नहीं है.
So it should not be good for me as well.
तो तक़वियत हो जाती है उसके लिए खुद के छोड़ने की.
And that strength will then come for that person to leave it themselves.
अगर तक़वियत न भी हो तो ये एक कमजोरी होगी इसकी.
If that resolve is not there, it's just going to be one weakness within him.
एक हुकुम तो पूरा होगा.
But at least one command will be fulfilled.
और अगर वो भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सक रहा उसे, तो दो हुकुम उससे छोड़ रहे हैं.
But if he's not warning against it and not stopping himself, then two things are not being completed.
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी हर मुसलमान पर लगाई है कि उसको दीन की मेहनत भी करनी है.
And this is why Allah Ta'ala put upon every Muslim that they have to go and make effort of the deen.
सबको अल्लाह पाक की जन्नत में लाने की फिक्र करना.
Everyone should, to bring everyone into paradise should be a concern.
और सबको जहन्नम से बचने की फिकर करना.
And to save everyone from hell should be a concern.
बशमूल अपनी जात के, अपनी बीवी बच्चों के.
For ourselves and for our wife and kids.
अपनी फैमिली के.
For our entire family.
अपने खानदान वालों के.
Our extended family.
अपने neighbors के.
Our neighbors.
मुसलमानों और गैर मुसलमानों के.
Muslims and non-Muslims
alike. ये इंसानियत का मसला है.
This is a whole mankind related.
और ये जिन्नात का मसला है.
And jinn related reality.
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन दोनों की तरफ मबूस थे.
Rasulullah was sent to both man and jinn.
और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिम्मेदारी मुसलमान इंसानों में भी है, जन्नत में भी है.
This is why Rasulullah's responsibility is upon human beings and jinn.
आप बोलेंगे कि उनमें हम कैसा कर सकते हैं?
How you say, well, how can I do this amongst them?
जो लोग उस जगह के होते हैं उनसे अल्लाह पाक वो काम भी लेता है.
Those people who have that capability, Allah takes
उसमें भी काम करते हैं.
They make effort on them as well.
ये किस्सा मैं आपको सुनाऊं, इसमें इस लाइन का बहुत दिलचस्प है थोड़ा.
I will share one story with you. It's super interesting.
हमारे हैदराबाद इंडिया हैदराबाद के अमीर साहब जो है नईमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं अभी हाल में, उनका इंतकाल हुआ.
The अमीर साहब इन हैदराबाद नईमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह just passed away recently.
तो ये निजामुद्दीन जाते थे.
He used to go to निजामुद्दीन.
उनकी अहलिया भी जाती थी.
And his family used to also go.
क्योंकि उनकी अहलिया मस्तूरात में जाके ठहरती थी, वहाँ पे मस्तूरात को भी ठहरने का नज़म होता है.
His family, meaning wife, used to go with the women's arrangement.
और ज़्यादा आने जाने की वजह से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे.
And because they would go quite often, their relationships were strong.
ये किस्सा मुझे डायरेक्ट नईमुल्ला खान साहब ने सुनाया है.
And the Amir साहब told Mufti साहब this directly.
दरमियान में कोई वास्ता नहीं है.
There's no link in between.
तो एक मर्तबा नईमुल्ला खान साहब की बीवी ने हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से पूछा.
One time Amir Sahib of Hyderabad, नईमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह asked मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह's wife.
His wife asked.
So yeah, the wife of Amir Sahib asked the wife of मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह
कि अम्मी जान हमने सुना है कि यहाँ पे जिन्नात भी आते हैं.
That, oh my dear mother, term of endearment, I've heard that even jinn come over here.
और वो लोग भी जमात में लगते हैं.
And they also go out on jamaat.
तो वो थोड़ा खामोश हो गई.
So she became quiet.
फिर उसके बाद कहने लगी कि अभी एक हफ्ता पहले तुम लोगों को जमात में भेजा गया था.
So just then she said, last week you all were sent on jamaat.
मतलब उसमें एक आदमी तुम्हारे साथ था, अताउल्लाह खान.
And there's a person with him, Ataullah Khan Sahib, with you.
Uski biwi bhi saath mein thi.
His wife is with you as well.
Kehne ki Ataullah bhi jinn hai, uski biwi bhi jinn.
So Ataullah and his wife are both jinns.
Naimullah Khan Sahib ne sunaya, kehne ki meri biwi ko bukhar aa gaya 8 din ke baad.
Said that from this she was overcome, she actually became sick from this.
To Allah, wo aise log hain wahan pe ki unki auraton ko maloom hai.
That such people exist that even the women folk there know.
और वो ना डरते उनसे ना घबराते उनसे.
They're not afraid or worried about.
वो दीन के काम में लगा हुआ है उनको.
They're just they actually get them engaged in the work of deen.
मुसलमान जिम्मेदार है.
Muslims are responsible.
एक मर्तबा में हम कश्मीर गए हुए थे जमात में.
Once we went to Kashmir on Jamaat.
वहाँ एक साहब के बारे में मालूम हुआ कि ये जिन्नात में भी गश्तें इनकी होती हैं मुलाकातें होती हैं.
We met as an individual there who we found out that he goes and does gusht amongst even the jinn folk.
तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि आपका वो मामला है.
So I asked him that, you know, I've heard this is the situation with you.
वो मुस्कुराए और खामोश हो गए.
So he smiled and became quiet.
मैं इनकार किया ना इकरार किया.
He didn't deny it nor accept it.
मुझे कुछ कहा नहीं उन्होंने.
He didn't say anything.
और लोगों ने बताया कि हमको कंफर्म मालूम है कि ये बंदे का मामला उधर से है.
But others said we have confirmed that this is.
अगर हम दीन की मेहनत में लगेंगे तो अल्लाह पाक किससे क्या काम लेगा नहीं बोल सकते हैं.
If we engage ourselves in effort of
deen, हो सकता है कि हमको बाद मर्तबा पता भी न चले और अल्लाह पाक उनमें काम ले.
We might not even know from whom, but Allah Ta'ala take effort from.
हुज़ूर पाक सल्लम 6 मर्तबा जिन्नत में तशरीफ ले गए हैं हदीसों से साबित है.
It's established in hadith that Rasulullah SAW went 6 times to the jinn folk.
Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ki khud riwayaton mein iska zikr maujood hai.
It is mentioned that the narration of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu.
Bahut waqiat hai iske.
There's many.
Gharz ye hai ki hamare hum par jo Allah Pak ka hukm mutawajjih hai us hukm ko dekhna hai humko.
The command that's directed towards us by Allah Ta'ala, we should look at that command.
Jaise hum namaz kyon padhte hain kyunki unka hukm hai.
Why do we pray? Cuz the command.
Humko daawat kyon dena hai?
So why do we give da'wah?
उनका हुक्म है.
It's a command of Allah.
हमारी बंदगी का हिस्सा है वो.
This is part of our slavehood.
हम रोजा क्यों रखते हैं? उनका हुक्म है.
Why do we fast? Because
हमको खुदूस क्यों करना है? उनका हुक्म है.
It's the same reason why do we go out to give
दावा. अगर हम एक काम को लेकर बैठ जाएं और दूसरा काम नहीं करेंगे तो हम पूरे बंदगी में कहां उतर पाएंगे?
If we only sit and do one thing not the other, then how can we complete?
कैसे अल्लाह से अपना ताल्लुक बनेगा फिर?
How can we complete our connection with
Allah? एक है हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने तौर पर ये समझ लिए कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक बन गया.
Only from our understanding we'll think that we have relation to Allah.
और एक ये कि वो हमें पसंद करें.
But the other is
कि ये मेरे ताल्लुक वाला बंदा है.
But the other situation is he loves us and he declares us to be a person who's connected.
इसलिए कुरान पाक में क्या फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की इत्तेबा करो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा.
Thus in Quran it's mentioned if you claim to love me then follow the way of the Prophet ﷺ then Allah will love you.
हमारा उनको चाहना काफी नहीं है.
It's not enough for us to love Allah.
उनको हमारा चाहना जरूर है. हमारी जरूरत यह है कि वो हमें चाहने लगे.
Our need is that Allah Ta'ala loves us.
और हम वो हमें चाहेंगे कब? जब हुजूर की हम इत्तबा करेंगे.
And when will he love us? When we follow the way of the Prophet.
और हुजूर की इत्तबा में ये है.
And this is including the Prophet.
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने का काम मेरा भी है और मेरे इत्तबा करने वालों का भी है.
That calling to people is the command given to Prophet and those who follow the Prophet as well.
और अजीब बात यह है कि ये हुजूर का हक है.
And this is it's what's strange and amazing. This is the right of the Prophet.
यानी इसके अंदर कैटेगरीज हैं बहुत सी. एक इस वजह से भी हुक्म है कि ये हुजूर का भी राइट है ये.
There's many categories that fall underneath this. One is that it's the right of the Prophet above us.
कुरान पाक में इसका जिक्र है.
This is mentioned within Quran.
नबियों के जिम्मे भी ये हक रखा गया है हुजूर का.
That even within the prophetic right this is included.
सुना होगा आपने हजरत मौलाना बदर आलम मीठी की किताब तर्जुमान सुन्ना शायद देखी हो आपने.
Perhaps you've seen the तर्जुमान सुन्ना of
बदर आलम मीठी की.
ये
मौलाना जो है ना कश्मीर अनवर शाह कश्मीरी के खास शागिर्द थे. तो दारुल देवबंद के बड़े बड़े लोगों में से गुजरे हैं.
One of the elders of दारुल देवबंद, one of the great students of मौलाना अनवर शाह.
उनकी किताब है तर्जुमान सुन्ना.
His book तर्जुमान सुन्ना.
उनकी किताब में बहस है ईसा अलैहि सलाम के आने की.
There is
बहुत तफसील से.
There's a detailed discussion of the coming of Isa alayhi salam.
Isa alayhi salam ka aana barhaq hai.
That this is true. It will happen.
Aur ye mutawatirat mein se hai.
And it's from that which has been rigorously authenticated.
Agar koi aadmi usko nahi manega to kafir ho jayega.
Someone doesn't accept this is a kafir.
Mutawatir usko kehte hain ki jo aqeedah mein aa jati hai cheez.
Something that's mutawatir is included within aqeedah.
Jab aqeedah mein aa jati hai to iman baki rehne ke liye zaruri ho jati hai wo cheez.
If it's within aqeedah, your iman to be complete has to include.
तो ईसा अलैहि सलाम क़यामत से पहले आसमान से उतरेंगे ये अकीदों में आ गया मुसलमानों के इस्लाम के.
The fact that Isa alayhi salam will descend from the heavens is now embedded within our aqeedah.
उसमें ये बहस उन्होंने की है कि ईसा अलैहि सलाम क्यों आएंगे.
In this he mentioned why is Prophet Isa alayhi salam going to return.
उसमें उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक नबियों पर रखा गया था उस हक को अदा करने के लिए आएंगे.
One of the reasons is for him to fulfill the haq that the Prophet had over the other anbiya.
Pure nabiyon par ye kaha gaya tha ki tum mere nabi ki nusrat karoge.
That for all
the nabi ki nusrat karoge.
For all the Anbiya has been told that you will help and aid the final messenger.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ پوری آیت ہے وہ جس میں یہ مضمون موجود ہے.
In this verse Allah Ta'ala has said that he has taken the oath from the Anbiya and from them he took oath that they will help the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس میں اب اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے حضور کا سب سے آخر میں آنا طے ہوا.
Within Allah Ta'ala's grand plan, it was designated that the Prophet would be from the last messenger.
Ab wo sare nabi to ja chuke hain.
All the other anbiya have left.
To nabiyon ne ye jo vaada kiya tha, is vaade ko pura karne ki shakal kya hai?
So how will the anbiya fulfill this promise they made?
To ye likha hai usme ki nabiyon ne jo vaada kiya tha, us vaade ko pura karne ke liye representative banke, unke numainda banke pure nabiyon ki taraf se Hazrat Isa alaihi salatu wasalam aayenge, phir Dajjal ko qatl karenge taaki nusrat ho jaye.
So within
aapke kaam mein shirkat ho.
So within Tarjuma Sunnah it's mentioned that Isa alaihi salam will be the representative of all the anbiya to fulfill this vow. He will come down, he will kill the Dajjal, and this will be the nusra of the Ummah of the Prophet.
Aur nusrat mein phir wo ye karenge ki Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ki shariat ko puri duniya pe lagu karenge.
And then part of this nusra is going to be that he's going to spread this deen of the Prophet to the entire world.
Aur aise andaaz mein lagu karenge ki logon ko phir ikhtiyar nahi denge.
And he'll be in such a way that people no longer have this option or choice.
Unki taraf se elan jo hoga do cheezon ka special hoga.
He will have
hadith mein aata hai ki teen kaam karne ke liye asal aa rahe ho.
Prophet Isa is going to come for three specific reasons.
Balki ek riwayat mein hai char kaam karenge wo.
And some say one narration four reasons.
Ek to ye hai ki wo dajjal qatl karenge.
One to kill dajjal.
Dusre ye hai ki wo khinzir duniya se khatam karenge.
And one to remove pork from the entire world.
Kyunki ye jo hai na ye sabse gandi sabse khabees tarin cheez puri duniya mein agar hai wo khinzir hai.
And the pig is the most despicable, defiled thing within the world.
Allah ki makhluq hai wo.
Though it's a creation of Allah.
Allah Pak ki makhluq hone ke haisiyat se hum uski hiqarat nahi kar sakte.
Because it is a creation of Allah Ta'ala, we're not going to completely believe it.
Magar Allah Pak ne sharai etebar se usko jo maqam diya hai wo bhi manna zaruri hai.
But we have to accept how sharia looks at this as well.
Jo insaan ki ghilazat hoti hai na, usse bahut zyada ghilazat usme hoti hai, uske pure wujood mein hoti hai.
And the existence, within the existence of this animal is the horrible realities of humanity.
Hamari jo ghilazat hoti hai wo usse bhi zyada galiz cheez hai.
Our excretion.
Sorry, the excretion.
Our excretion. They are worse than our excretion.
Oh, that ghilazat. Okay. So they are actually worse than our feces and our impurities.
Uske wujood ki, matlab ye ki uska jo jism hai uski.
Its actual physical presence.
Allah tabarak wa ta'ala ne usme kya baat rakhi hai wo Allah hi jante hain.
What Allah Ta'ala put within it, only Allah knows.
Jitne haram janwar hain, agar unki khal ko aap dibagat doge, to unka istemal kisi surat mein jaiz ho sakta hai.
No matter any animal, haram, if you tan the hide of it, you can still utilize it.
Magar khinzir ko nahi kar sakte.
But not that of pig.
Uski agar khal ko aap dibagat de denge, phir bhi wo paak nahi hoti.
Even if you tan the hide of a pig,
uska baal istemal nahi ho sakta.
Can't you not use his hair?
Uska fat istemal nahi ho sakta.
Can't use its fat.
Uski koi cheez kisi surat mein istemal nahi ho sakta.
Cannot use any part of it.
Paak hone ki koi shakal nahi hai uski.
It can never become pure.
Usko najisul ayn kehte hain.
It's known as being inherently impure.
Uske duniya mein uske asraat agar insaan ke jism mein kisi bhi shakal mein gaye, wo insaan ke andar deendari ki haqeeqat nahi utar sakti.
If any of its traces enter into a human being, they cannot be pious.
Isliye Isa alayhi salam aake puri duniya se khinzir ko khatam karenge. Ye hadith mein hai ye baat.
That's what in hadith we see Isa alayhi salam.
Usme ye tafsil maine hadith ke isme sunaya tha aapko. Tafsil to phir ye alag uski shakal mein hai, tashrihat ke andar hai. Baqi wayaqtul khinzir ka jo lafz hai usko main bata raha hu ki Isa alayhi salam ke aane mein ek kaam unka ye hoga.
The killing of the pig, we see all the details that exist within the shakal.
Aur teesri cheez wayaqsiru salib. Sarib tod denge.
He's going to also come to break the cross.
Kyunki duniya ka sabse bada jhoot hai ye.
This is the greatest lie and fallacy of the world.
Ki Isa alayhi salam ko suli hui.
That Isa alayhi salam was crucified.
Unko suli nahi hui hai.
He was not crucified.
Wo zinda upar gaye hain.
He was elevated living.
Wo isi wajah se aane wale hain.
In that way he'll return.
To isliye wo puri duniya se isko todenge ki ye galat aqeeda hai, ye jhoot hai bilkul.
And this will be destroyed across the world to remove this incorrect thing.
Aur chauthi cheez ka ye elan karenge ki masayif wa imal islam. Ab ye islam hai ya talwar hai.
And then he will finally announce that either Islam or the sword.
वो इस पर मुझे याद आया कि वो आके नुसरत जो करेंगे तो उसमें ये करेंगे कि अब किसी को चांस नहीं दिया जाएगा.
And then in this nusra, he's not going to. There's no other opportunity for a person.
या इस्लाम कबूल करो.
Accept Islam.
या फिर इसके नीचे आ जाओ.
Or come beneath the sword.
उस वक्त पता चलेगा कि वो कितने बड़े सियासी लीडर भी हैं.
And at that time, you'll see how great of a political leader he is.
लोग समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पॉलिटिक्स नहीं आती थी.
People assume that Isa alayhi salam had no political prowess.
वो जो है ना बस ये है कि वो इंतजाम दुनिया का नहीं करते थे.
That he had no connection to this world.
वो एक थप्पड़ अगर कोई मार दिया तो दूसरा भी पेश करते.
They say turn the other cheek, hit one.
वैसा नहीं है वो मसला.
That's not the case.
वो उनको एक खास काम के लिए रखा गया, फिर उसके बाद उठा लिया गया, फिर वो आएंगे, फिर वो उस सलाहियत को दिखाएंगे जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई. उस एतबार उस लाइन की सलाहियत का जोर जब होगा.
When he came, he showed the qualities at that point which he had to. Then he was elevated. Then when he descends, he'll show the rest of his qualities which will be relevant at that time.
पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करेंगे, ईसाइयत को नहीं.
At that time, he's going to spread Islam throughout the entire world.
वो ईसाइयों को भी इसका पाबंद बनाएंगे.
And he's going to make even the Christians become.
किसका? इम्मत सैफ और इम्मत इस्लाम का.
They have to follow either become Muslim or under the sword.
ये उनका मसला है. इस वजह से मुझे सुनाने में भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियात तो करनी चाहिए. मगर मैं बता रहा हूँ कि खुद ईसा अलैहि सलाम क्या करने वाले हैं, हमें हमारे पैगंबर ने बताया.
This is what our Prophet has shown, that Prophet Isa alayhi salam.
तो ये क्यों करेंगे? ये नबी की नुसरत से ताल्लुक रखने वाली चीज है.
So why will he do this as nusrat of the Prophet?
इसका वादा उन्होंने किया हुआ था पूरे नबियों ने.
This is the culmination, the promise.
उसको पूरा करने के लिए वो बनकर आए, नुमाइंदा बनकर आएंगे.
To complete that promise, he'll be the representative of all the Anbiya.
ये बात मैंने इस पर अर्ज की कि दीन की मेहनत करना और दूसरे वजूहत तो उसके हैं ही, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स में से.
And to do after the deen, this is actually from the rights of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
जैसे उनके जिम्मे हैं, वैसे उम्मते मुस्लिमा के जिम्मे हैं.
Just as his responsibility, it's the responsibility of every ummati of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ میں کن پر رحم کروں گا.
Within Quran, it's mentioned upon whom will I have mercy.
فرمایا کہ میں ان پر رحم کروں گا جو میرے نبی کے حق ادا کریں گے.
And I will have mercy upon those who complete the rites of the Prophet.
Surah Araf میں اس کا ذکر ہے.
It's in Surah Al-Araf.
اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے.
Allah Ta'ala mentions you have to take iman upon him.
Unki ta'zim karna bhi zaruri hai.
You have to honor him.
Unki ittiba karna bhi zaruri hai.
You have to follow him.
Unki nusrat karna bhi zaruri hai.
And you have to do nusra in aid of him.
To yahan do cheezon ka alag bayan hai.
So this is a bayan, an explanation of two
different things. Ittiba ka bayan alag hai.
Following him is one
explanation. Nusrat ka bayan alag hai.
And aiding his way is one explanation.
Agar hum ittiba sunnat kar lenge तो ऐसा नहीं होगा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के अदा करने वाले बन जाएंगे.
Just only by doing ittiba sunnah, following the sunnah, we haven't completed the haq of the Prophet.
और भी जिम्मे में हमारी आएगी चीज.
There's something else within our responsibility.
वो इस आयत में है, फल्लदीन आमनु बिही, बिही से मुराद हुजूर हैं, ही का मरजा हुजूर की तरफ है. फल्लदीन आमनु बिही वअज़रूहु वनसरूहु वत्तबअउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून.
That within this verse, those who believe in him, and him the antecedent is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then who honor him, and then who follow him, and then who aid him, those are the successful individuals.
Nusrat ka matlab hota hai jo nabi ka kaam tha duniya walon ke liye, us kaam mein humko hissa lena padega.
So this nusra of aiding the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have to take our share of this effort as well.
Agar hum Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ka muqarrar karda haq jo Allah ne hum par muqarrar kiya, aur main haq muqarrar kiya, wo hum ada nahi karenge to hamara sulook kaise tay hoga, ye batao.
How will we have our spiritual rectification if one of the main rights that Allah Ta'ala set for us to fulfill the Prophet is not fulfilled?
Aur ye jo da'wat hoti hai usulan, ye be talab mein hoti hai.
In this da'wah, it is without any be talab, without seeking.
Jiske andar raghbat nahi rehti.
No desire.
Jin logon mein talab hoti hai, unmein taaleem hoti hai, tarbiyat hoti hai.
Those people who have this desire, they have both education and teaching and rectification.
Masjid mein aage saathi, bhai hame kuch batao.
People come to the masjid.
Hum aapse sunna chahte hain.
I want to learn from you.
Hum aapse janna chahte hain.
I want to recognize
you. Hum aapse tarbiyat chahte hain.
I want to be rectified through
you. Tazkiya chahte hain.
I want to be straightened through you.
तो ये तालीम और तरबियत कहलाती है.
This is तालीम and तरबियत.
जिन लोगों के पास दीन की कोई अजमत नहीं रही, जब हम वहां जाकर उन तक ये बात पहुंचाते हैं, इसको दावत कहते हैं.
But that's one. But when you go to the people who don't care and are not desiring this, that is दावत.
ये नुसरत कहलाता है खास.
this is specifically the people of Prophet most went to, it was those who did not have a desire towards
them.
And then those who have this desire then grow, then education took
place.
And when education took place, rectification took place. The Prophet had all three responsibilities. We're not going to be complete followers if we only hold one way. We have to grab all three of them. Yes, you'll have a dominant
interest.
Not everyone's going to have the complete, everyone will have one inclination. It's difficult to have complete following the Prophet.
حضرات صحابہ میں بھی ایک قسم کی جامعیت تھی لیکن وہ بھی جامعیت بعد والوں میں مشکل ہے.
Even the صحابہ رضی اللہ عنہم had a type of this completion.
بعد میں مختلف شعبے بن گئے.
But thereafter different branches came into the deen.
اور ان شعبوں کے مختلف specialties ہو گئی ہیں. وہ specialist بن گئے اس کے. محقق بن گئے.
And from these branches you had people specializing.
انہوں نے اس کو اختیار کر لیا.
And then they would choose those
parents.
But to one, a certain extent, everyone has to be together.
हमारे बचपन में जो आमतौर पर डॉक्टर हुआ करते थे, वहाँ पे मुख्तलिफ शोबे नहीं थे उसके.
In my childhood, there weren't these branches of physicians.
बल्कि जो MBBS होता था, वो सब चीजों को take care करता था.
That physician at that time would take care of all things.
Jafar Ali Khan एक हमारे family doctor थे.
Jafar Ali Khan was a family doctor.
हमारे मर्दों का, हमारे घर के बूढ़े लोगों का भी इलाज वही करते थे.
He would cure the elders.
औरतों का भी वही करते थे.
And the women.
बच्चों का भी वही करते थे.
And the children.
पेट का भी वही, दिमाग का भी वही, हड्डियों का भी वही, रगों का भी, सब का वही करते थे.
The stomach, the veins, the mind, the bones. He would take care of everything.
हमारे पास तो ये है कि बस हर कुछ हंगामा या आलमबुवत रहमतुल्लाह अलमीने हमबुवत वाली बात होती थी. यानी सब आदमी एक जगह जमा हो जाता था.
So at that time, it was one person took care of all the needs.
मगर अब क्या है कि जो आँख वाला है वो दांत को नहीं हाथ लगाता.
But nowadays the eye doctor will not touch the teeth.
और जो दांत वाला है वो पेट को हाथ नहीं लगाता.
The dentist will not touch the stomach.
अलग-अलग शोबे हो गए.
Different branches.
क्योंकि हर एक में इतनी details हो गई हैं.
Because so much details have.
मगर MBBS तक तो सबको आना पड़ता है.
But at least that basic medical education is for everyone.
Specialist जो है ना वो उसके बाद होता है.
Then the specialization comes afterwards.
तो दावत और तालीम और तरबिये का एक ऐसा stage होता है कि वहाँ हर मुसलमान को आना होता है वहाँ तक.
But calling to the deen, educating and rectification, every Muslim has to reach that together to a certain.
हर आलिम गैर आलिम को आना होता है.
For a scholar and a non-scholar.
हर दीनदार गैर दीनदार को आना होता है.
Be a righteous or person.
फिर उसके बाद उसकी अपनी मशगूलियत के इत्तेबार से उसके अलग-अलग काम तकसीम होते हैं.
Then based upon that person's business, then it will be divided what he's in.
इसलिए हम में से हर साथी के जिम्मे ये भी है कि हम तरबियत हासिल करें.
So for all of us, we have to look at our rectification.
ये भी है कि हम इल्म हासिल करें.
And we have to gain knowledge.
और ये भी है कि हम दावत का काम करें.
And we have to engage in dawah.
उस दावत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी जात को खास फायदा पहुंचाएंगे.
And then Allah Ta'ala will grant us very special.
उसकी बहुत तफसीलात हैं जो हमेशा तबलीग वाले सुनाते रहते हैं.
And the people of tabligh, they often show.
मुझे सिर्फ ये अर्ज करना था कि एक बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है सुलूक की लाइन से दावत की लाइन का.
But my purpose today was to show this deep connection between the line of dawah and the tasawwuf.
इसलिए अगर हम इसमें तरक्की करना चाहते हैं तो हमको दावत में भी लगना होगा.
So if I want to gain positions or height in tasawwuf, I have to be engaged in dawah.
बस एक बात जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं.
So I want to mention one thing, then I'll come to a conclusion.
वो बात ये होती है कि आदमी जो चीज ले सकता है ना वो उसके अपने अंदरून की इस्तेदाद के एतबार से ले सकता है.
So a person, if they're going to seize or take something, it's based upon their capacity of reception.
ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये अलग-अलग किस्म के होते हैं.
These bulbs over here, they're of different types.
कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज का होता है, कोई कम वोल्टेज का होता है.
Some are high voltage, some are low voltage.
हमारे पास जो है ना जीरो से शुरू होता है.
For us, it begins from zero.
फिर उसके बाद सेवन पे जाता है.
To seven.
फिर उसके बाद 14 वोल्टेज का होता है.
Then 14 volts.
फिर 60 का होता है.
Then 70.
फिर 100 का होता है.
Then 100.
500 का, 1000 का, 10000 का होता है.
500, 1000.
शादियों में जो लगाते हैं ना वो 10,000 का होता है.
The wedding bulbs, 10,000 watts or voltage.
ये जो फर्क है ये बॉल के अंदर पाई जाने वाली इस्तेदाद का फर्क है सर.
The difference here is based upon the capacity in that bulb.
जिस वोल्टेज जिस बल्ब के अंदर 14 की आपने वोल्टेज रखी सलाहियत रखी हुई है अगर आप उसमें 100 का करंट छोड़ोगे वो बस्ट हो जाएगा.
If you take a 14 voltage or watt bulb and put it where a current is supposed to have 1000, that bulb will burst.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یہ سورج سے زیادہ روشن ہے.
The self of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the beautiful honored self, is more illuminated than the sun.
اگر آپ کا فیض آپ کے پاور کے اعتبار سے,
if the Prophet's spiritual energy from his power,
عام انسان نہیں,
not a regular person,
خاص الخاص انسان کی طرف بھی اگر ڈالیں گے تو بست ہو جائے گا وہ.
If that tawajjuh came towards a very special person, that person would
lose. روحانیت کو لینے کی استعداد کسی میں بھی نہیں ہوتی.
That type of spiritual acceptance no one has.
حتیٰ کہ محیدن ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ نبیوں میں بھی نہیں.
Such that Imam Al-Arabi رحمت اللہ علیہ had wrote that even the انبیاء didn't have that capability.
کیونکہ انبیاء کی اپنی استعداد خاص ہے, امام الانبیاء کی اپنی استعداد خاص ہے.
That even the capacity of the anbiya, the imam of the anbiya has a higher capacity.
Ruhaniyat aadmi mein apni istidad ke mutabiq aayegi.
The spiritual gain of a person is based upon their specific capacity.
Hamare andar Quran aur hadith ka noor kyon nahi utar raha?
Why isn't the light of Quran hadith entering into us?
Quran to wahi hai.
Quran is Quran.
Na wo Quran padhta.
Does he not read Quran?
Na to uski taaseer khatam hoti.
So the facts do not come to an end.
وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا.
It is the same way that it came upon the
Prophet. وہ اللہ کا کلام ہے. وہ
is the word of Allah.
اللہ پاک زندہ ہے.
Allah Ta'ala is ever living.
اللہ تعالی بوڑھے نہیں ہوتے.
Allah does not age.
کمزور نہیں ہوتے.
He is not weakened.
فنا نہیں ہوتے.
He does not
annihilate. توکل علی الحی الذی لا یموت, اس پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے, جو مرتا نہیں ہے.
Trust upon the one who is ever living, will never die.
تو اللہ پاک کا معاملہ, اللہ کے کلام کا معاملہ, اللہ کے دین کا معاملہ کمزور نہیں ہوتا.
Allah's way, Allah's words, Allah's path will never become weakened.
Huzur ki sunnat kamzor nahi hoti.
The sunnah of the Prophet will never weaken.
Hazrat Mujaddid Al-Fasani rahmatullah alayh ne farmaya hai ki Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ki kisi bhi sunnat ka noor agar duniya walon par zahir kar diya jaye to wo mar jayenge.
Imam Ahmad Hindi rahmatullah alayh mentioned that if the noor of the Prophet in any sunnah came upon dunya, people would pass away.
Akhirat mein uska zuhur hoga.
It's only can become clear
in dunya. Mein istidad hi nahi hai ki us noor ko zahir kiya jaye.
The world is not ready for its light to come upon it.
استعداد کے اعتبار سے فیض کا جریان, فیض کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے.
Based upon the capacity of acceptance, phase can enter.
ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ ہماری استعداد کا فساد ہے.
The issue for us is our capacity is corrupted.
ہم بلبوں کی طرح سے ہیں.
We're like bulbs.
اور اس میں بھی بالکل جو فیوز ہو گئے ویسے ہو جا رہے ہیں ہم لوگ.
In like the bulbs that have just burnt out.
اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر قرآن اور حدیث کا نور آ جائے.
And we're expecting the nur of Quran and Hadith.
ہم چاہتے ہیں بزرگوں کی روحانیت آ جائے.
And the spirituality of the saints to come upon us.
نہیں, استعداد بنانی ہوگی.
No, we have to build our capacity.
دنیا کی چیزوں میں اور ہم میں ایک خاص فرق یہی ہے.
This is the difference between the
وہ نے ایک مرتبہ بلب فیوز ہو گئے بعد پھر صحیح نہیں ہوتا وہ.
In the dunya, the bulb goes wrong and can never be.
ہمارے ساتھ دوسرا سسٹم ہے.
We have a different system.
ہمارا فیوز ہونا ایک خاص کنڈیشن میں ہے.
Our burning out has a specific condition.
اس کو قساوت کہتے ہیں. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك.
That is a hardening that occurs.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة والی آیت میں جو بات بیان کی گئی.
This is in the verse of Allah Ta'ala placing a seal upon the capacity of seeing, hearing, and upon the hearts.
Allah پاک حفاظت فرمائے.
Allah protects from
this. کیونکہ وہ مہر لگ جانے کے بعد میں پھر نہیں پلٹتا بندہ.
Because once the heart is sealed, they cannot turn around.
جیسے درخت کے اوپر امرود ایک مرتبہ سوکھ گیا تو پھر ہرا نہیں ہوتا.
Just like when the foliage upon a tree shrivels away, cannot come back.
وہ استعداد فاسد جب ہو جاتی ہے انسان کی.
That capacity at that point will be completely corrupted.
مگر اس سے پہلے کی جو حالت ہے اس میں بہت عروج و نشیب و فراز ہے.
But before that time there's a great opportunity.
اس میں یہ خصوصیت ہے کہ جتنی ہم دین کی محنت کریں گے, دعوت اللہ کا کام کریں گے, اتنا زیادہ ہماری استعداد میں اضافہ ہوگا.
So in this, the more effort we make towards deen, the more our capacity will grow.
اور یہ تجربے سے بھی تعلق ہے اور اس پر قرآن اور حدیث کی دلالتیں بھی موجود ہیں.
This is not only through experience but also through Quran and Hadith.
اس میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آدمی محنت کرتا ہے اتنے اس کے قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, کیفیت آتی ہے. جتنا قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنے جذبات بنتے ہیں, جتنے جذبات بنتے ہیں اس اعتبار سے وہ قرآن اور حدیث کے انوارات کو لیتا ہے.
So through this effort, when the capacity grows, the excitement comes in. From the excitement comes in, then that acceptance then occurs.
یہ تو دین کی محنت کا ایک خاص فائدہ اندر کی استعداد کی ترقی ہے.
So the benefit from deen is all based upon the growth of the capacity of a person.
جتنے زیادہ ہم یہ بڑھائیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے سکیں گے فیض اقدس اور فیض مقدس بولتے ہیں اس کو.
In this, based upon how we grow this known as faiz aqdas and muqaddas, I will be able to accept it.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان بھی بولتے ہیں اس کو.
This is also the benefits of the nur of the Prophet ﷺ.
ہر امتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیضان ہونا ضروری ہوتا ہے تب ہی وہ دین پر چل سکتا ہے.
And only if the every member of the Ummah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is able to take this in, will they be able to walk on
deen. ہم اگر دین کی محنت کریں گے تو ہماری استعداد میں اضافہ ہوگا.
And if we make effort on deen and do this work, then we'll have growth and capacity.
اس کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں کی بینائی.
For example, the blindness of the eye.
اور قرآن اور حدیث کی مثال ایسی ہے جیسے باہر کی روشنی.
And then the example of Quran Hadith is like the light from the outside.
اگر باہر کی روشنی ایک دم فل ہے,
if the light
دوپہری کا سورج نکلا ہوا ہے,
if the light is full, like when the sun comes out,
مگر یہ کہ آدمی اندھا ہے,
but a person is blind,
فائدہ نہیں ہوتا,
there is no benefit.
اور اگر ایک آدمی کی بینائی اچھی ہے,
but a person is able to see,
لیکن قرآن اور حدیث کا نور نہیں ہے وہاں پہ,
but there's no Quran Hadith,
وہ آدمی بھی نہیں چل سکتا,
then that person cannot walk.
بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اندر کی استعداد بہت بڑھاتے ہیں,
they're those people who grow their capacity,
لیکن ایمان ہی نہیں ہوتا ان کے پاس,
but they have no faith.
ہم نے بہت دیکھے ہیں ہمارے ملکوں میں ایسے,
I've seen many
سنیاسی, راہب, پوپ, جنگل میں رہنے والے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے مجاہدے میں زندگی گزارنے والے, تپسیا کرنے والے, فلا فلا یہ وہ, بہت ہوتے ہیں جوگی سنیاسی.
Mufti Sahib, I've seen many people like this who are engaged as their own spiritual leaders, but outside of deen, and they do all these acts of deprivation. A lot of spiritual exercise occurs.
Concentration bhi bahut seekhte hain.
A lot of focus.
Sab kuch hai, imani nahi.
But they have no light of
Quran. Bahar ki roshni nahi.
There's no light that
na Quran ka noor hai, na hadith ka noor hai.
Nor the light of Quran nor hadith comes to them.
To usse kya hota hai, gumrahi paida hoti hai.
So from them they go astray.
Musalmanon ke andar bhi agar baghair ilm ke andar ki istidad hoti hai, to bidat aur khurafat usi se paida hoti hai.
And for those individuals who begin to do this without the light of Quran hadith, then this is where the bid'at and these things come from.
Dono cheezon ko combine karna zaruri hai.
To bring these things together,
andar ki istidad badhate rehna,
to grow the inner capacity,
Quran aur hadith se noor leke chalte rehna,
and to take the light of Quran hadith,
tab jaake ek aadmi mein kamal aur tarakki aati hai.
Then a person will have ascension and perfection.
Isliye hum sab bhi mere dosto ye soche ki hame apni in mashghooliyaton ke sath mein apne aap ko deen ki mehnat mein bhi lagana hai, jisko hum daawat bhi kehte hain.
So my brothers, we should consider that this type, with our business, we should engage in da'wah. And
ye humme se har saathi ke zimme hai,
and this is within responsibility.
Koi ye nahi keh sakta ki main majboor hoon.
No one can say we're busy,
kyunki koi majboor nahi hota,
because no one is completely busy.
Majboori jo haqeeqi hoti hai wo lakhon karodon mein kisi ko hoti hai.
Maybe one out of a million type of people are really that busy.
Agar haqeeqi majboori ho to fir uske zimme nahi hota koi kaam.
If it's that case, then they won't have this responsibility.
جب احوال ذمہ داروں کے سامنے آئیں گے اور حقیقی مجبوری ہوگی تو آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ تم دعوت کا کام کرو.
In that situation, no one will push you towards da'wah.
بولے گا بھی تو پھر وہ سرکل میں بولے گا جہاں پہ آپ ہیں.
And if even then, only within your capacity.
خروج کو نہیں بولے گا.
They will not tell you to go out.
خروج کا مطلب ہوتا ہے استنفرتم فنفرو. حضور نے فرمایا جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کیا کرو.
The Prophet has mentioned when you were told to go out that you should go out.
اگر مجبوری ہو تو نہیں ہوتی وہ چیز.
If you're completely tied up, that's not going to be
حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں,
you know, اویس قرنی
افضل التابعین ہیں,
the greatest of the تابعین,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے کے ہیں,
from the time the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم,
صحابی نہیں بن سکے,
but he could not become صحابی,
وہ صرف ایک منٹ کا کام تھا, حالانکہ
it's only one moment of
آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے مل کے چلے جاتے صحابی ہو جاتے,
just to come see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and leave, he'd be صحابی,
اور صحابی کے مرتبے کو کوئی بھی تابعی پہنچ دے سکتا, کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکتا,
and no ولی and no تابعی could ever reach that position,
اتنا بڑا مرتبہ تھا,
such a high position,
لیکن ان کی ایک مجبوری تھی کہ حضور کے پاس اگر وہ آتے تو ان کی ماں کے پاس کوئی نہیں تھا.
But he had a true thing that was holding him back. If he came to the Prophet ﷺ, then no one would be with his mother.
ماں بوڑھی تھی, خدمت کی ضرورت تھی اس کو.
His mother was a very old and sick and
اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ.
And no one was there to support her.
اور اس زمانے میں ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی سینٹر انٹر میں ان کو رکھے جاتے.
And it wasn't a time of
rehab center میں اس میں اس
نے rehab center.
کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی.
Nothing like that.
اگر وہ آتے تو ماں مرنا ہی مرنا تھا.
If he left her, she would have passed away.
دنیا کے اصول کے اعتبار سے.
Based upon worldly.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں آپ نہیں آنا.
So the Prophet told him, no, you cannot come.
ماں کی خدمت میں ہو.
Stay in the service of your mother.
بس صحابی نہیں بن سکے.
So then he couldn't become صحابی.
کیونکہ واقعتاً مجبوری تھی.
Because he was really actually busy.
مگر تابعی بھی کیسے تابعی بنے.
But what a tabi.
حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ تم جب اویس قرنی سے ملو تو امت کے لیے دعا کرانا ان سے.
Such that Hazrat Umar radiallahu anhu was told that when you meet Uwais al-Qarni that you ask for dua for the ummah.
Aap inse unki mahbubiyat ka andaaza kijiye.
See the belovedness that
they have. Taqarrub Allah ka andaaza kijiye.
How close is it to Allah?
Aur isko kehte hain ittiba.
This is true ittiba.
Asal jo hai, asal muhabbat manna hai baat ka.
accepting his true love.
Unki mohabbat mein kya kuch zyada ubal nahi ho raha tha unka ki huzur ko dekhna hai, huzur se milna hai.
His love, how much he wanted to see the Prophet ﷺ.
Unke ishq ka kya hal tha, sabko pata hai ki jab huzur pak sallam ke ghazwa uhud mein daanton ke toot jane ka zikr mila ke maar rakhe aapke daant toot gaye to Hazrat Uwais Qarni ne pure daant tod liye.
That it's mentioned
maar maar ke.
When Uwais Qarni had heard that the Prophet's tooth was broken in Uhud, that he broke all his teeth.
हालांकि उनको ये पता चला था कि हुजूर के दो दांत टूटे
मगर
उनको ये नहीं पता था कि दो कौन से टूटे
इसलिए
उन्होंने अपने पूरे तोड़े मोहब्बत का आप अंदाजा फरमाइए उस बंदे में कितना ज्यादा इश्तियाल नहीं था यानी उसमें शौक नहीं था होगा हुजूर को देखने का
हाउ मच डिजायर ही हैड टू सी द प्रोफेट
हुजूर को मिलने का
टू मीट द प्रोफेट
खिदमत ए अक्दस में हाजिर होने का
बी इन हिज बिलोवड प्रेजेंस
मगर मोहब्बत का असल कमाल है बात मानना
But true love is accepting what it's
been told. नहीं तुम मत आओ मेरे पास.
He's told, don't come.
नहीं गए.
So he didn't go.
बगैर साबी के रह गए.
So he did not become sahabi.
मकसूद तो उनकी रजा है ना भाई.
But the goal is love and acceptance.
मकसूद तो अल्लाह पाक की रजा है.
Allah's pleasure is the goal.
उनकी रजा मिल गई.
And he received Allah's
pleasure. इतना बड़ा मर्तबा उनको मिला कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है उमर से फरमाया है तुम्हारा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम मिलोगे वैसे करने से उम्मत के लिए दुआ करा
सच अ हाई पोजीशन दैट इवन हजरत उमर रजी अल्लाह सेड व्हेन यू मीट हिम आस्क फॉर दुआ फॉर द उम्मत
तो मजबूरी में तो नहीं होता ऐसा
सो यस
लेकिन हम जो अपने आप को समझे हुए हैं मजबूर हैं है नहीं हम शैतान ने हमें समझाया हुआ है कि हम मजबूर हैं
सो वी आर नॉट रियली बिजी शैतान मेक्स अस थिंक वी आर बिजी
ये कैसे मालूम हुआ
हाउ डू वी नो दिस
ये ऐसे मालूम हुआ कि जितने लोग इस वक्त दावत के लिए निकल रहे होते हैं ना सबकी फीलिंग पहले ऐसी थी
Because all the people in the work of Dawah now, they all had this feeling before.
क्यों मैं नहीं कर सकता दुनिया कर सकती हूँ.
Said I can't do it, others can do.
मैं सफर नहीं कर सकता मेरी मजबूरी अलग है.
I can't travel, my situation is special.
मेरे हालात अलग हैं.
My condition is special.
लेकिन थोड़ा 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 करके जब वो निकलना शुरू हो गए तो उनके लिए आसान हो गया.
But little by little, it then became easy.
मालूम ये हुआ कि ये एक महज एहसास था.
That this was the feeling that they
had. हकीकत नहीं थी.
It wasn't a reality.
हम हिम्मत नहीं कर पाए.
They just not put the effort.
जुरात हिम्मत चाहिए.
Have to have effort.
फैसले कुव्वत फैसला से काम लेना पड़ता है
you have to take effort you have to take work from
mujahide ke liye thoda kadam badhana padta hai
you have to step forward for sacrifice
quran pak mein asal mein hai ye mazmoon jo main suna raha hu aapko
this is within quran this topic
ke shaitan tumhe ghabrane lagta hai darata hai
shaitan will make you worry
tum nahi kar sakte aisa karoge to ye ho jayega wo ho jayega wo ho jayega
if you do this will happen this will happen this will
aur allah pak fazl ka vaada kar raha hai tumhare sath
and allah taala has promised grace
jab main fazl karne ka vaada kar raha hu to fir shakal karegi shakal hogi tum himmat to karoge
when I have found allah's promises bounties we should just make the effort
aur jab allah ka hukm koi hota hai mere dosto to aadmi kar sakta hai usko tabhi hukm hota hai
when allah's command is there that means a person is able to
puri ummat ko allah pak ne ye hukm diya hai
That Allah Ta'ala put this upon the entire.
तो इसका मतलब उम्मत ये काम कर सकती है.
That means we can all make this effort.
जो नहीं कर सकते वो बहुत exceptional होते हैं.
Rare cases that someone.
तो इसलिए हम सब को हमारे अपने दुनियावी मशगूलियत के साथ में दीनी मशगूलियत को इख्तियार करना जरूरी है. दीनी मशगूलियतों में इन सब कामों के साथ जो हम कर रहे हैं हमें अपने दीन की मेहनत करना भी जरूरी है और हम हमारी जिम्मेदारियों में से हुदूस आसल्लम के हुकूक में से अल्लाह पाक के ताल्लुक में ये बात जरूरी है कि हम अल्लाह के रास्ते में भी निकलने की कोई तरतीब बनाए
And so from even with our worldly obligations we have to choose deen obligations and from deen obligations we have different things we have to submit to and from those these things in particular is a right the Prophet has over us which is that we have to go out for da'wah
puri duniya mein hamari muntazir hai
the entire
halaat din ba din
waiting
aur halaat din ba din kharab ho rahe hain
And the situation is getting bad the entire
world naslon ki nasle tabah ho rahi hain
generations have been destroyed
har roz 3 lakh se zyada muslim naujawan bacche bachiyan paida hote hain
every day 300,000 muslims are born
puri duniya mein
in the entire world
aur sab pata hai aapko ki jahil paida hote hain
they're born ignorant
jaise hum jahil paida hue the
as we were
sari duniya jahil paida hoti hai
everyone is this way
aur har roz ho rahi hai
this happens every day
ये मैं वहां से बोल रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बताया कि पूरी दुनिया में लोग एवरेजली कितने पैदा होते हैं उसके हिसाब से मैंने मुसलमानों का निकाला तो वो 3 लाख के करीब निकले
I'm saying this based upon the average figures and then you take the percentage of Muslims this is where I got the 300,000 from
और दूसरे दिन फिर 3 लाख पैदा हो जाते
Next day, same thing.
उसी एतबार से ये बड़े हो रहे हैं
this is how we're growing.
तो आज जो 3 लाख बालिग हुए
Those 300,000 became बालिग
कल फिर हो जाएंगे 3 लाख
Next day, same thing.
परसों फिर 3 लाख हो जाएंगे
Next day, same thing.
वेटिंग नहीं है इनकी कि भाई इनकी तालीम हो जाए तरबियत हो जाए उसके बाद दूसरा ब्याज भेजेंगे
इट्स नॉट देयर इज नो वेटिंग फॉर देयर एजुकेशन देयर रेक्टिफिकेशन ऑफ हर
होना ही होना है अगर हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो ये जाया हो जाएंगे.
If we don't go to them, they'll be ruined.
ये melt हो जाएंगे.
They're going to be destroyed.
तो हमसे कैसे नहीं पूछा जाएगा भाई?
Then how will not be asked from
कि
us?
तुम इसमें क्या करे?
Then what did you
तुम तो मेरे खलीफा थे.
You were my representative.
वही قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. तुम मेरे नुमाइंदे.
Allah Ta'ala says that we're His representative on the
earth. मेरा काम तुमको करना ही था पूरी दुनिया में.
My work you have to.
मेरी मर्जियात को चलाना था.
You have to take my will.
मेरा खलीफा मैं वहाँ पे बिठाया हूँ और मेरे हुक्मों की पामाली को देख के खामोश बैठा रहा. ये कैसा खलीफा यार?
What type of steward are you if my command came down you're not acting upon it?
मेरी मर्जी को जो नाफिज नहीं करा वो खलीफा कैसा होगा?
You cannot make clear my own will. What type of steward are you?
वो तो नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है.
We can't do it. We should at least make effort.
भाग दौड़ कर सकता है.
We should at least put the physical.
जान मार लगा सकता है.
We should try.
अपने आप को थका सकता है.
We should wear ourselves out.
हैसियत बना सकता है.
Without any held back.
अपनी शाहियत को, अपनी हैसियत को, अपनी पोजीशन को, अपनी दौलत को, सब चीजों को भूल के काम में लग सकता है.
We can put everything behind us that stands as an obstacle.
क्योंकि दीन के काम करने के वास्ते इन सब चीजों को थोड़ा सा उन सामने वाले को नहीं पता आप कौन है.
Because all the person in front of you doesn't know who you are. We
have to put,
this is responsible for the entire ummah. Especially in situations like this where people without choice are leaving deen.
And
this is what all our responsibility is that we do this. The foundation is that which
अगर हम वो मेहनत में अपने आप को लगाएंगे अपने अंदर भी कुव्वत में इजाफा होता रहेगा हमारी हिदायत में नूर ईमान में इजाफा होता रहेगा और अल्लाह पाक उससे एक माहौल भी बनाएगा दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा और हमारा फर्ज भी अदा होगा इस तरीके से अल्लाह पाक राजी होंगे.
If by doing this then we'll have capacity that begins to grow then the nur will enter then an entire environment will be established through this.
इसलिए आमतौर पर यह है कि अगर हम इसका सबसे पहले माइंड बनाएं
so first have to make up our mind,
फिर यह है कि इरादा भी कर लें
then have to make intention.
फिर यह है कि इजहार भी कर दें
then have to show that intention.
फिर उसके बाद कोशिश भी करें
then have to make the effort.
और दुआ भी अल्लाह पाक से करते रहें
then have to ask Allah subhanahu wa ta'ala.
उसके बावजूद भी कोई उजर पेश आ जाए तो फिर तो उजर ही है ना माजूरी है
then something happens
उधर नहीं पेश आया तो करना है
and if not, then go forward with
उससे पहले के जितने प्रोसेस हैं मराहिल हैं वो हमारे इख्तियार में है और अल्लाह पाक ने इस वक्त हमें उस पोजिशन में रखा है वो करना चाहिए.
Those initial steps are within our choice and our
तो सब करेंगे वो इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, असबाब भी मुयस्सर फरमाए.